सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्तिदीप प्रकरण में ज्ञानी की प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे। ज्ञानी के विषय में चर्चा की थी हम लोगों ने, कर्मी आत्मा को नहीं जानता है, प्रतिज्ञा आत्मा को नहीं जानता है। उस साक्षी को जानता नहीं है, अर्थात शरीर बुद्धि और वाणी को अपने से अलग करके उस प्रतिज्ञा आत्मा को नहीं जानता है। किंतु तत्वज्ञानी शरीर वाणी और बुद्धि को अपने से अलग करके उस प्रतिज्ञा आत्मा को क्या है, अपने स्वरूप के रूप में क्या है वो जानता है, अर्थात आत्म रूप से जानता है। प्रत्येक आत्मा को, साक्षी को आत्म रूप से जानता है। जानने के कारण जो है उस ज्ञानी कर्मी के साथ इस ज्ञानी का कोई विरोध नहीं होता है, अर्थात ज्ञान होने पर अज्ञानी कर्मी के साथ उसका कोई विरोध नहीं है। तो इसके आगे ये कहता है कि उस ज्ञानी की जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है, इन्होंने कह दिया कि ज्ञानी को मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण किसके विषय में, शरीर वाणी और ये देह के, शरीर वाणी और बुद्धि के प्रति क्या हो गई, मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण भले ही उसको उस ज्ञानी को क्या है प्रवृत्ति हो जाए कर्म में, तो उससे कोई हानि नहीं है। मिथ्या समझ करके यदि प्रवृत्त होता है तो उस प्रवृत्ति से कोई हानि नहीं है। जैसे मान लीजिए कलाकार है, अभिनय कर रहा है, वो जानता है ये सब मिथ्या है, तो मिथ्या में क्या है, वो अभिनय कर रहा है फिल्म में, तो वो जान रहा है कि मैं जिसका अभिनय कर रहा हूं वो क्या है, मैं मिथ्या हूं, वो वास्तविक सही नहीं है। किंतु उसकी प्रवृत्ति से, कृष्ण के अभिनय से उसी कोई हानि हुई क्या, कोई हानि नहीं हुई। कोई जो है खलनायक का रोल कर रहा है तो है तो वो मिथ्या ही है, मिथ्या होने पर भी क्या उसका कोई नुकसान है क्या, कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह ज्ञानी भी जो है मिथ्या तो बुद्धि से यदि कुछ उसकी प्रवृत्ति होती है तो कोई उसमें हानि नहीं है। यही 75वें श्लोक में बता दिया था हम लोगों को। तो कहते हैं ये जो ज्ञानी की जो प्रवृत्ति जो है और निवृत्ति, ये बताइए ज्ञानी की प्रवृत्ति से तो कोई मतलब ही नहीं ज्ञानी को, वो प्रवृत्त होने से क्या फल है उसको, कोई उपयोग नहीं ज्ञानी को, कि सब कुछ मिथ्या सिद्ध हो गया उसकी दृष्टि से, तो उसकी प्रवृत्ति क्या है उपयुक्त नहीं है, उसकी प्रवृत्ति से कोई लाभ नहीं है, सिद्धांति ने कह दिया। तो कहते फिर निवृत्ति से भी क्या लाभ है, जैसे प्रवृत्ति से भी लाभ नहीं है तो निवृत्ति से क्या लाभ है, ये कहते हैं नहीं लाभ है, दोनों से लाभ है, प्रवृत्ति से भी लाभ है और निवृत्ति से भी लाभ है। तो प्रवृत्ति किसके लिए लाभदायी है, जिसको आत्मा को जानना है उसको क्या है श्रवण मनन निध्यासन में क्या प्रवृत्त होना चाहिए, अथवा आत्मा को जानने के लिए जो अंतकरण शुद्धि आवश्यक है तो उस अंतकरण शुद्धि के लिए साधक को, जिज्ञासु को क्या है प्रवृत्ति उपयोगी है। और फिर ज्ञानी के लिए जो निवृत्ति है उसका उपयोग क्या है, तो कहते बोध होने के लिए, साक्षात्कार होने के लिए निवृत्त होना जरूरी है, मतलब उस आत्मा को जानने के लिए साधक की प्रवृत्ति उपयोगी है, और ज्ञानी की निवृत्ति क्या है साक्षात्कार, उस ज्ञान का जो है बोध होने के लिए उसकी निवृत्ति भी क्या है, जरूरी है। दोनों की उपयोगिता है। ज्ञानी के जिसको बोध है, बोध का हेतु बन जाती है निवृत्ति, और उस बोध अर्थात बोधरूप आत्मा को जानने के लिए अर्थात उस बोधरूप आत्मा को ज्ञान कराने के लिए शास्त्र के द्वारा साधक की प्रवृत्ति भी क्या उपयोगी है, दोनों उपयोगी हैं। इसलिए ये हो जाएगा, कोई बात नहीं है। सेवेंटी सेवन है ना, तो ये होता है, ये कह दिया उन्होंने। इतना जरूर है प्रवृत्ति और निवृत्ति, निवृत्ति होगी ज्ञानी में और प्रवृत्ति होगी साधक में, किंतु इन दोनों के प्रवृत्ति और निवृत्ति में समानता एक है। वो क्या समानता है? भोग का अभाव। दोनों में क्या है? भोग का अभाव है, उसमें कोई भोग नहीं है। और जो अज्ञानी होते हैं उनकी किसी कर्म में प्रवृत्ति होती है तो उस कर्म का फल वो भोगते हैं, माने भोग के लिए ही कर्म करते हैं। अज्ञानी सावन मास का क्या है अनुष्ठान कर रहा है तो क्या हो, किस लिए? कि भगवान प्रसन्न हो जाए, मुझे संसार की वस्तु दे दे, तो उसका क्या मैं उपभोग करूंगा। किंतु एक साधक भी क्या कर रहा है? सावन मास का अनुष्ठान कर रहा है, तो वहां पर भोग के लिए नहीं है, उस भोगों से निवृत्त होने के लिए क्या है उसकी प्रवृत्ति है, अर्थात निष्काम भाव से जिसको कहते हैं, निष्काम भाव से उसकी प्रवृत्ति है, इसलिए वहां पर भोग नहीं है। जैसे निवृत्ति में ज्ञानी में कोई भोग नहीं है, इसी तरह साधक में भी क्या है प्रवृत्ति में भोग नहीं है, इसलिए दोनों में समानता है, ये बता दिया। इसलिए जो है निवृत्ति क्या है, बोध का हेतु है, इसलिए उसकी उपयोग का अभाव है ऐसा नहीं कह सकते। निवृत्ति से क्या होगा बोल रहे थे ना, कि निवृत्ति से क्या होगा, जैसे प्रवृत्ति से कुछ नहीं है तो निवृत्ति से भी क्या है, तो कहते निवृत्ति से क्या है आपको बताते थे, निवृत्ति से क्या है बोध होता है, यही फल है, इसलिए निवृत्ति का कोई फल नहीं है ये आप कह नहीं सकते। वही कहते निवृत्तेर बोध हेतुत्वात् न उपयोग अभाव, उपयोग का अभाव है ऐसा आप नहीं कह सकते, ये बता दिया। बोध हेतु निवृत्तिश्चेत इसके द्वारा, तरी प्रवृत्ति अपि बोधसा हेतुत्वात् उपयोगवती, वो जो प्रवृत्ति है क्या है बोधसा में अर्थात उस ब्रह्म के जिज्ञासा में, ब्रह्म को जानने में क्या है उपयोगी है, ये क्या है तथा इतरा भूतसायम, तथा इतरा मतलब, इतरा मतलब वो प्रवृत्ति क्या है जिज्ञासा के लिए क्या है उपयोगी है प्रवृत्ति। अब कहते हैं ननु बुद्धस्य भूतसाभावात् प्रवृत्तेः अनुपयोगित्वम्। कहते जिसको ज्ञान हो गया, बुद्धस्य मतलब ज्ञानी, उस ज्ञानी के लिए बुभुत्सा में प्रवृत्ति नहीं है, अर्थात जिसने उस ब्रह्म को जान लिया, उस ब्रह्म ज्ञानी को क्या है फिर दोबारा जानने में क्या है उसकी प्रवृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? अनुपयोगित्वात्। अनुपयोगित्वम क्यों? एक बार जान लिया फिर दोबारा जानने की जो इच्छा वो कैसी उपयोगी है क्या अनुपयोगी है? अनुपयोगी है। क्यों? अरे जिस चीज को हमने जान लिया फिर उस चीज को ही वापस जानना, उससे कोई उपयोग है? अधिक कोई लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। किसी वस्तु को जान लिया एक बार, जानने के बाद फिर दोबारा उसमें जानने के लिए जा रहे हैं, वो जाना तभी सार्थक बनता, उस जानने में और कोई वृद्धि होती, किंतु यहां पर कोई वृद्धि नहीं है, इसलिए अनुपयोग होने के कारण किसका? प्रवृत्ति का। इसलिए ज्ञानी क्या है वो प्रवृत्त नहीं होगा, तो उसके विषय में बताते हैं। बुद्धिश्चेन्न बुभुत्सेत, बुद्धिश्चेन्न बुभुत्सेत, नाप्यसौ बुध्यते पुनः नाप्यसौ बुध्यते पुनः अबाधादनुवर्तित अबाधादनुवर्तित बोधो न त्वन्य साधनात् बोधो न त्वन्य साधनात् बुद्धश्चेत् न बुभुत्सेत। यदि ज्ञान हो गया फिर उसको जानने के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। नाप्यसो बुध्यते पुनः, कहेंगे नहीं बोध तो हो गया, तो बोध होने के बाद फिर दोबारा जानने के लिए, मैंने आज जान लिया चार दिन के बाद फिर जानना है उसको, उस जानने के लिए पुनः प्रवृत्ति हो सकती है? तो कहते हैं नहीं। नाप्यासो बुध्यते पुनः, वो बार बार क्या है उसको जानेगा, ऐसा नहीं एक बार जान लिया यानी कि बार बार उसको जानता जा रहा है ऐसा नहीं, एक बार जान लिया ये दोबारा ऐसे बार बार नहीं होता कि नहीं वो जानने के लिए जा रहा है। तो न अपि आसो बुध्यते पुनः, वो उसको बार बार बोध होता है, ये बार नहीं। बोध नाम की चीज एक ही है, वो बार बार जानना होता नहीं है क्योंकि वस्तु तो एक ही है ना। अब एक वस्तु का बोध हो गया उसको दोबारा बार बार जानना बनता है क्या? लोक व्यवहार में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ अनेक वस्तुएं है ना, वो तो हाँ वो तो है ही। हाँ उनका कहना ही है वस्तु एक है, इसको जान लिया, जानने के बाद उसको दोबारा बार बार जानने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। न बुध्यते पुनः बार बार कहते हैं। अच्छा ये ऐसा क्यों? मान लीजिए अपना ही स्वरूप है, चलिए अपने स्वरूप को हमने जान लिया, उसका बाद नहीं होता है, बात क्यों नहीं हो सकता है? बात हो सकता है, जैसे हमारा अपना ही स्वरूप वर्तमान में क्या है विस्मृत है क्या नहीं हम लोग है? तो कहते विस्मृत होने के बाद फिर मान लीजिए जान लिया, ठीक है, जानने के बाद फिर क्यों वापस जो है अज्ञान आकर के, फिर अज्ञान आने के बाद फिर उसको जानने के लिए फिर क्यों प्रवृत्ति नहीं हो सकती? तो कहते उसका उत्तर अबाध अनुवर्तत, उसका जो बोध है वो कैसा है? वो बोध निरंतर चलता रहता है, उसकी अनुवर्ति ज्ञान बराबर चलता रहता है, वो बोध कभी नष्ट होता नहीं है, बोध हमेशा बना रहता अखंड रूप से। अच्छा वो बोध अखंड रूप से बना भी रहता है तो ऐसा क्यों बना रहता है? तो कहता है वो जो बोध है वो बोध ऐसे किसी अरे गहरे प्रमाण से बोध नहीं हुआ है, वो वेद रूप प्रमाण से क्या हुआ है? वो बोध हुआ है, वही कह रहे न तू अन्य साधना बोध हो, जो बोध हुआ है ना अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप का जो बोध हुआ है वो किसी ऐसे मिथ्या प्रमाणों से नहीं हुआ है, वो तो वेद से क्या है बोध हुआ है, वेद रूप प्रमाण से वो बोध हुआ है, और वेद रूप प्रमाण से जो बोध होने वाला है वो कभी नष्ट हो नहीं सकता। अन्य प्रमाणों के द्वारा आपका जो बोध है वो मिट सकता है, जैसे चक्षु प्रमाण है तो चक्षु प्रमाण से जो दूर की वस्तु जो छोटी दिख रही है तो वो जो ज्ञान हो गया बोध हो गया वो बोध का बाद हो सकता है। क्यों? ये चक्षु प्रमाण जो है कैसा है वास्तविक नहीं है, अब जब नजदीक जाएंगे तो बड़ा दिखेगा, जैसे सूर्य है सूर्य तो इतना ही दिख रहा है, तो चक्षु प्रमाण से दिखने वाला जो सूर्य उस सूर्य जो दिख रहा है इतना सा उसका बाद होगा कि नहीं? जब नजदीक जाएंगे तो बड़ा दिखने लगेगा। मतलब जैसे श्रुति प्रमाण जैसे जो प्रमाण श्रुति के प्रमाण के जैसा अन्य कोई प्रमाण नहीं है, बाकी जितने भी प्रमाण है उन प्रमाणों के द्वारा होने वाला ज्ञान यदा कदाचित क्या हो सकता है, बाधित हो सकता है, वो बाद भी हो जाता है, किंतु श्रुति प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध हुआ है अर्थात ज्ञान हुआ है वो ज्ञान कभी नष्ट होता नहीं है। वो ज्ञान अनष्ट न होने के कारण उसको दोबारा जानने की जो इच्छा है वो कभी जगती नहीं है, और जग भी जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो जिसका उपयोग ही नहीं है वो जानने की कोशिश करेगा ही क्यों, उपयोगिता वही है जानने की जहां कोई और कोई विशेष पता लगे, किंतु ऐसा नहीं है। अबाध अनुवर्तत बोध हो, वो बोध बाध नहीं होता है, क्योंकि बोधो न तो अन्य साधनात्, मतलब अन्य साधनों से बोध निर्माण नहीं हुआ है, वो वेद प्रमाण से निर्माण हुआ है, इसलिए बोध कभी बाध नहीं होता है। टीका देख लीजिए, बुद्धश्चिति तरही बुद्धस्य पुनर्बोधाभावात् हेतु निवृत्ति अपि बुद्धं प्रत्यानुपयोगिनी इति आह, कहते हैं तरी बुद्धस्य पुनर्बोधाभावात्, कहते जो ज्ञानी उस ज्ञान में क्या है बोध का फिर अभाव हो जाए। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज को सीख लिया और उसको छोड़ दिए, भूल गए उसका ज्ञान, तो फिर दोबारा क्या है उसको उस ज्ञान के लिए फिर प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। किंतु यहां कहते ऐसा नहीं है, बुद्धस्य पुनर्बोधाभाव, जो ज्ञानी है अपने स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी, उसके भीतर बोध का जो अभाव है पुनर्बोध अभावात, उसमें पुनर्बोध का अभाव हो सकता है, तद हेतु निवृत्ति अपि बुद्धं प्रति अनुपयोगिनी इति आह, कहते हैं बोध का अभाव न होने से क्या है बुद्धस्य पुनर्बोध अभावात्, बोध का अभाव होने के कारण तद हेतु निवृत्ति अपि, बोध का अभाव नहीं है वहां पर, बोध है क्या है, बोध का अभाव नहीं है, बोध है। तद हेतु निवृत्तिम अपि बुद्धम प्रति अनुपयोगिनी, कहता है ज्ञानी के लिए क्या है बोध का अभाव का जो हेतु निवृत्त हो गया है, माने बोध का अभाव का हेतु क्या है बोध का ज्ञान, अज्ञान जो है इसका बोध का जो अभाव का हेतु वो ज्ञान वो है वहां पर। पुनर्बोधाभावात् तद हेतु निवृत्ति अपि बुद्धं प्रति अनुपयोगी, कहते हैं वो जो निवृत्ति है अनुपयोगी है, क्यों, क्योंकि वहां पर बोध है वहां पर, इसलिए प्रवृत्ति अनुपयोगी है, अनुपयोगी नीति आह नापी, नापी का मतलब कहते हैं नापी असो बुद्ध्यते पुनः, एक बार बोध हो गया फिर दोबारा बोध की कोई आवश्यकता नहीं है। सकृत जातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय निवृत्ति अपेक्षते, न करे मान लीजिए बोध हो गया, बोध हो गया तो एक बार बोध हो गया तो एक बार बोध हो गया तो उस बोध को स्थिर करने के लिए निवृत्ति की जरूर है ना, ऐसा शंका करता है कौन, पूर्व पक्ष है, क्या है जो एक बार बोध हो गया उस बोध को स्थिर करने के लिए आपको निवृत्ति की अपेक्षा होनी चाहिए। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वह स्थिरत्वम बाधक अभावम अपेक्षते, क्या है ये जो बोध के स्थिर के लिए एक बार जो बोध हुआ है उसकी स्थिर के लिए निवृत्ति की अपेक्षा होनी चाहिए। तो कहते हैं निवृत्ति की अपेक्षा नहीं है, तो क्या अपेक्षा है वहां पर जो बोध को स्थिर करने के लिए, तो कहते बाधक अभावम स्थिरत्वम, स्थिरता ही क्या है बाधक का अभाव का अपेक्षा करता है, क्या है हाँ बाधक है ना, उस बाधक के अभाव की अपेक्षा करता है। स्थिरता ही क्या है, वो बोध, बोध को जो है स्थिर रखता है, जो स्थिरता है ना। स्थिरत्वम बाधक अभावम अपेक्षते, जो बाधक का अभाव कौन अपेक्षा करता है, स्थिरत्व। इन्होंने क्या कह दिया था, माने स्थिर रहना, वो दृढ़ कहिए उसको, स्थिर कहिएगी तो कहते बाधक अभाव स्थिर ही कहते हैं, जो स्थिरत्वम है। बाधक का अभाव क्या है, अपेक्षते, तो बाधक का अभाव क्या है, स्थिरत्व। ज्ञान का बाद न हो इसके लिए क्या चाहिए, आपके भीतर स्थिरता चाहिए। और कोई निवृत्ति नाम की कोई चीज नहीं है कि उसको निवृत्त होना पड़ेगा, जैसे कर्म से निवृत्त हुआ था ना, तो इस तरह ऐसे कोई निवृत्ति और कोई निवृत्ति करना नहीं बनता है। जिस निवृत्ति के द्वारा क्या है, बोध स्थिर हो जाए इसलिए निवृत्ति करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है, मात्र स्थिरता ही क्या है, जो बाधक का अभाव अपेक्षा करता है। बाधक का जो अभाव है ना, वो किस कारण है, स्थिरता के कारण है, निवृत्ति के कारण नहीं है। न साधनांतरम, अर्थात उस बोध को स्थिर के लिए साधनांतर की आवश्यकता नहीं है, मात्र स्थिरता ही कारण है बोध में। अबाधात इति कहते हैं, वो ज्ञान क्या है, बाधित न होने के कारण उसके लिए और किसी निवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई ऐसा, तो कहते हैं वो जो ज्ञान है वो बाधित क्यों नहीं होता है, उस ज्ञान के लिए, उस प्राप्त हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान इसलिए बाधित नहीं होता है, वाक्य प्रमाण जन्य ज्ञानस्य बलवता प्रमाणेन बाधाभावाद अनुवृत्ति स्याद। ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ये किससे आया है, तो कहते हैं वाक्य प्रमाण जन्य है, अर्थात श्रुति वाक्यों से क्या है, ये ज्ञान जन्य है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, तत्व क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब क्या है, महावाक्य है। इन वाक्यों से क्या है, जन्य होने के कारण ये बोध बलवान है। क्यों, बलवान प्रमाण से क्या है, ये ज्ञान आया है। कौन सा, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान। तो बलवान प्रमाण से आने के कारण बाधा अभावात, अर्थात उसके बाध का अभाव होगा, अर्थात उसका कभी भी बाध नहीं होगा। अनुवृत्ति इसलिए क्या है, चलता रहेगा, होगा खंडित नहीं होगा। सदैव अतो न साधनांतरम तद अर्थम अनुष्ठेयम, इसलिए उस ज्ञान को टिकाए रखने के लिए साधनांतर की क्या है, जरूरत नहीं है। उस ज्ञान को टिकाने के लिए कोई ये न सोचे कि नहीं हमको और कुछ करना चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका ज्ञान श्रुति प्रमाण जन्य है तो वो ज्ञान आपका हमेशा स्थिर रहेगा। हाँ, आप दूसरे किसी से आप ज्ञान अर्जित करते तो खत्म हो जाए, किंतु श्रुति से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ आत्मा विषय, वो ज्ञान कभी भी बाध होता नहीं है। क्यों, सबसे प्रबल बलवान प्रमाण यदि कोई है तो श्रुति प्रमाण है, उस श्रुति प्रमाण का खंडन कोई भी कर नहीं सकता है, इसीलिए उस ज्ञान का बाध संभव नहीं है। इसलिए अन्य कोई निवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान स्थिर ज्ञान है, वो उस ज्ञान में क्या है, स्थिरता है, क्योंकि प्रबल प्रमाण से ज्ञान वो क्या है, उत्पन्न हुआ है। जैसे भ्रम ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है, अस्थिर होता है। क्यों, क्योंकि उस भ्रम ज्ञान का बाध करने के लिए प्रमाण है हमारे पास। हाँ, जो रस्सी पर में ज्ञान हो रहा है क्या, सर्प का, वो किस से उत्पन्न हुआ है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है। तो उस भ्रमात्मक ज्ञान का बाध करने के लिए हमारे पास क्या है, हम कोई टार्च ले आएंगे देखेंगे तो परमाणु से बाध हो जाएगा। जो दूर से दिखने वाली छोटी वस्तु तो उस ज्ञान का क्या हो जाएगा? अभी तो हमें बोध हो रहा है छोटी है, तो छोटा ज्ञान हो रहा है, अरे छोटा है ऐसा ज्ञान हो रहा है, किंतु इस ज्ञान का बाद क्या हो जाएगा? जब नजदीक जाएंगे तो बाद हो जाएगा। इसका अर्थ यह है, श्रुति प्रमाण को छोड़कर बाकी जितने भी प्रमाण है उन प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो बाध कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो बाध होता है, किंतु ये ज्ञान बाध नहीं होता है। ननु प्रमाणांतरेण अबाधि अपि अविद्या तत्कारेण कृतित्वाध्यासेन वा बाध। शंका करते हैं, चलिए आपने क्या है कि प्रमाणांतर से क्या है? अबाध है। किसी प्रमाणांतर से क्या है? बाध नहीं होने पर भी जो अविद्या का जो कार्य है, आपको ज्ञान तो हो गया किंतु जो अविद्या का कार्य तो है ना, जैसे अभी ब्रह्म का बोध हो गया तो अविद्या का कार्य जगत है, तो आपकी अविद्या तो समाप्त हुई, ज्ञान समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, अज्ञान मतलब अविद्या, अज्ञान चला गया, किंतु उस अज्ञान का कार्य वो तो बना रहेगा। अब उस कार्य के कारण आपके भीतर दोबारा अध्यास आने की संभावना है, कह रहे हो अबाधे अभी अविद्या क्या है? प्रमाणांतरेण, प्रमाणांतर के द्वारा क्या है? अबाधे भी, अर्थात दूसरे प्रमाण के द्वारा आपका ज्ञान बाध नहीं होने पर भी अविद्या का जो कार्य अभी भी है, ज्ञान होने के बाद कुछ सब नष्ट होता है, हो जाता है कि अदृश्य हो जाता है? नहीं है, दिखता कार्य तो है ना। हाँ, पर उनके कहना यह है कि कार्य तो है ना, अब तो कार्य है तो उसमें जो है कार्य होने पर कर्तृत्वादी अध्यास होगा, जब कार्य तो कर्तृत्वादी का अध्यास होगा, उस अध्यास से क्या है आपका ज्ञान बाध होने की संभावना है, इसके लिए आपको तो करना ही चाहिए बार बार, उसके लिए जो निवृत्ति है अथवा उसको बार बार जानने की जिज्ञासा है, प्रवृत्ति है, ये सब करना ही चाहिए। तो कहते हैं ऐसे नहीं है, शायद इति आशंकया आह, ये शंका है उसका समाधान करते हैं। ना विद्या नापि तत्कार्यम्, ना विद्या नापि तत्कार्यम् बोधं बाधितुमर्हति, बोधं कार्यं बोधं कः बोधं बाधितुमर्हति, पुरैव तत्त्वबोधेन, पुरैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः, बाधिते ते उभे यतः। कह रहे न अविद्या नापि तत्कार्यम बोधम बाधितुम अर्हति। कहते हैं जिसका बाध किया था, जिस अविद्या का, वो अविद्या तो कुछ कर ही नहीं सकती है, जो खत्म हुई अविद्या, उसका कार्य भी कुछ कर नहीं सकता, अर्थात कारण ही भी कुछ नहीं कर सकता, तो कार्य क्या करेगा? ना विद्या नापि तत्कार्यम बोधम बाधितुम अर्हति, वो अविद्या भी कुछ कर नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उस अविद्या के विषय में हमें पता लग गया है, तो अविद्या भी नहीं कर सकती और उसका कार्य भी कुछ कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है उसका बता रहे, पूर्वैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः, क्योंकि ज्ञान होते जब पहले ही क्या किया उसने, जो बोध हुआ था ना आत्मबोध, उन्होंने क्या किया, उस अविद्या को और उसके कार्य को पहले ही बाध कर दिया है। जब बोध हो गया, बोध होने का मतलब क्या हो गया, बोध कब होगा? जब अविद्या नष्ट होगी तभी बोध होगा, तो अज्ञान हटने का मतलब क्या है? बोध होने का मतलब अज्ञान हट गया, तो बोध आ गया, अज्ञान चला गया, मतलब पूर्व क्या हो गया, बोध अज्ञान हट गया और उसका कार्य भी हट जाएगा। जब अज्ञान रूप जो मूल कारण है वो कारण ही हट गया तो उस कारण का जो कार्य कौन जगत जो भी है वो भले ही ना हटे परंतु वो उसको क्या है बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य अभी है ना, अविद्या समाप्त हो गई किंतु उसका कार्य अभी है, तो वो कार्य उसको कोई भी बाधा पहुंचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका कारण हट गया, कारण ही कुछ नहीं कर पा रहा है तो कार्य भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का बाध हो गया है। वैसे देखा जाए कार्य का भी बाध हो गया और कारण का भी बाध हो गया, बोध पूर्व ही रहा तत्वबोधहीन तत्वबोध के द्वारा ही क्या हो गया उसका बाध होने के कारण उसको फिर दोबारा कर्तृत्व का अध्यास होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व अध्यास के लिए क्या चाहिए? अविद्या चाहिए, वो अविद्या से ही कर्तृत्व का क्या है अध्यास होगा। जब अविद्या ही चली गई तो कर्तृत्व का अध्यास कहां से आएगा? हाँ, क्योंकि अविद्या का कार्य ना क्या अध्यास, जैसे सर्प का रस्सी का रस्सी की अविद्या अर्थात रस्सी का अज्ञान है, अज्ञान ही अविद्या है, जैसे रस्सी का अज्ञान क्या है सर्प का कारण है। अब क्या है रस्सी का ज्ञान हट गया तो वो नहीं नहीं रस्सी का अज्ञान हट गया तो अज्ञान हट गया तो उस अज्ञान का कार्य जो सर्प था वो रहेगा नहीं रहेगा। इसी तरह यहां पर भी कहते हैं कि जो अविद्या थी जो अविद्या का कार्य क्या था अध्यास, तो वो अविद्या ही जब हट गई तो अविद्या का कार्य जो अध्यास वो कहां से रहेगा? संभव नहीं है। ननु अविद्याया बाधितत्वेपि तत्कार्यस्य प्रतीयमानस्य बाधितत्व असंभवात् तेन बोधस्य बाधो भवेत्। वो शंका फिर दोबारा कर रहे है, कहते अविद्याया बाधितत्वेपि अविद्या भले ही बाध हो गई किंतु तो तत्कार्यस्य प्रतीयमान कार्य भी करे, भले अविद्या समाप्त हो गई किंतु तो कार्य तो रहेगा ना, अब कार्य तो प्रतीयमान है। तो कहते प्रतीयमान से बाधितत्व असंभव, जो प्रतीयमान है उसका तो हम बाध नहीं कर सकते, तो जब उसको बाध नहीं उसकी संभावना नहीं है बाध होने की तो उसके कारण आपका बोध बाधित हो सकता है। कोई कह रहे बोध से बाध हो, बोध की संभावना है, क्योंकि क्या है उसका कार्य है इसलिए बोध बाध हो सकता है, इसलिए आपको निरंतर बोध के लिए प्रवृत्ति होनी चाहिए। उनका तात्पर्य यह है बोध के लिए आपकी निवृत्ति होनी चाहिए, सतत संसार से निवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए, और प्रवृत्ति किस लिए? वो बोध बनाए रखने के लिए होनी चाहिए, इनका तात्पर्य है। तो कहते ये दोनों बातें नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे वो। भवेदिति आशंक्य उपादान निवृत्त्या एव तस्यापि बाधितत्वात् न तेनापि बाध। कहते हैं जो अध्यास का उपादान कारण वो कौन है? अविद्या। उपादान निवृत्त्या एव तस्यापि बाधितत्वात्, उपादान की निवृत्ति होने से उपादान का जो कार्य है उसकी भी क्या है निवृत्ति हो जाएगी। न तेन बाध, उसके द्वारा ज्ञान बाधित नहीं होता है, बोध कभी बाधित नहीं होगा। ये क्या है शंकितुम शक्यत इत्यताः, ये शंका करके कहते हैं उसका क्या है समाधान दे रहे न तेनापि बाध शंकितुम शक्यते, आप शंका नहीं कर सकते कि वो बोध है बाध हो जाएगा कार्य के द्वारा, नहीं, क्योंकि उपादान ही नहीं रहेगा तो उपादान का जो कार्य होगा कहां से रहेगा? नहीं रहेगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। उसको समझा रहे दृष्टांत के द्वारा। बाधितं दृश्यतामक्षैः, बाधितं दृश्यतामक्षैः, तेन बाधो न शक्यते, वृत्ति न बाधो न शक्यते। जीवन्नाखूर्न मार्जारम् जीवन्नाखूर्नमार्जारम् हन्ति हन्यात् कथं मृतः हन्ति हन्यात् कथं मृतः। बाधितं दृश्यताम् अक्षैः तेन बाधो न शक्यते। कहते हैं जो बाधित हो चुका है ज्ञान के द्वारा, बाधित होने के बाद भले ही आंखों से दिखे, उससे क्या है ज्ञान बाधित होता नहीं है। जैसे सूर्य जो है, अथवा स्फटिक ले लीजिए, स्फटिक के पीछे क्या है आपने लाल फूल रख दिया, तो आपको ये पता है स्फटिक कभी लाल होता नहीं है, दिख रहा है ना। किसके कारण दिख रहा है? चक्षु के कारण। चक्षु के कारण भले ही दिखे किंतु स्फटिक सफेद है, ये ज्ञान बाधित होगा क्या? बाधित हो ही नहीं सकता। चक्षु के द्वारा भले ही लाल दिख रहा है किंतु ये ज्ञान है कि चक्षु क्या होता है अपना स्फटिक सफेद होता है, ये आपको पता है, बोध है। ये बोध कभी बाधित नहीं होता है लाल दिखने पर भी चक्षु के द्वारा। इसी तरह बाधितम जो कुछ है बाध हो गया दृश्य जातम, पर चक्षु के द्वारा यदि दिख रहा है तो उतने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाधितम दृश्यताम जो दृश्य है क्या है ज्ञान अज्ञान बाधित हो गया, अज्ञान बाधित होने के कारण क्या है दृश्यताम आक्षय है, देखने दीजिए आंखों के द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेन बाधो न शक्यते, वो दिखने मात्र से क्या है बाध बाधित बोध बाधित नहीं होता है। कैसे? जैसे बता रहे जीवन नाकुर न मार्जनम हंती। अरे जीवित जो है, जीवित जो चूहा है वो बिल्ली को मार नहीं सकता, तो मरा हुआ चूहा क्या बिल्ली को मारेगा? नहीं मारेगा। इसी तरह ज्ञानी के दृष्टि से क्या है ये जगत मिथ्या सिद्ध हो गया, तो मिथ्या जब ज्ञान के द्वारा मिथ्या जगत सिद्ध हो गया तो उसको वो मार पाएगा? नहीं मार सकता। यही कह रहे जीवन नाकुर न मार्जरम हंती न हन्यात कथम मृतम। जो अब जीवित अवस्था में कह रहे, अब यहां पर जीवित अवस्था लीजिए, जब बोध है उसको, बोध होने के बाद अब वो जगत जो है उसको कुछ कर नहीं सकता, अर्थात उसके बोध को बाध नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब तो वो तो मिथ्या सिद्ध कर दिया ना, अब खत्म है वो। तो जो मरा हुआ जो है मिथ्या जगत क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि उसमें अब कुछ रहा नहीं ना तत्व। द्वैत दर्शनेन तत्वबोधस्य बाधाभावं कैमुतक न्याय प्रदर्शनेन द्रहितुं तद अनुकूलं दृष्टान्तम् आह। कहते हैं अभी तो जो द्वैत दर्शन है ना, द्वैत दर्शन तत्वबोध को बाध नहीं कर सकता है, इसको कैमुतिक न्याय के द्वारा अर्थात समझा रहा है। तद अनुकूलं दृष्टान्तम् आह, उसके अनुकूल एक दृष्टांत दे रहे हैं। पहला तो उन्होंने क्या दिया, जैसे जीवित चूहा बिल्ली को कर नहीं सकता कुछ, तो मरा हुआ चूहा क्या कर सकता है? इसी तरह यहां पर उन्होंने कह दिया जिसका बाध हो गया जिस बोध के द्वारा, उस बोध को बाधित वस्तु कुछ भी नहीं कर सकती। अब और एक दृष्टांत देते हैं यहां पर, अपि पाशुपतास्त्रेण अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न ममारयः विधश्चेन्न ममारय निष्फलेषु वितुन्नांगो निष्फलेषु वितुन्नांगो नंक्षतीत्यत्र का प्रमा नंक्षतीत्यत्र का प्रमा। देखिए पाशुपतास्त्रेन विद्धश्चे न ममारय। अरे जो पाशुपात अस्त्र से क्या है जिसको बांधा है उसे भी मरा नहीं, पाशुपात अस्त्र से जो मरा नहीं है वो क्या निष्फलेशु वित्तुनांगेन, निष्फल मतलब जिस बाण में क्या है नोक नहीं है लोहे की, ऐसा बाण मार दिया तो क्या वो मरेगा? जो पाशुपात अस्त्र से नहीं मर पाया, एक खंडित बाण जिसमें कोई लोहे की नोक नहीं कुछ नहीं और वो बाण मार दिया क्या उससे मरेगा? नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? पाशुपातास्त्र है। उस पाशुपातास्त्र से क्या है ये? इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबको खत्म कर दिया, किसको? सबको, जगत को मिथ्या सिद्ध किया। तो वो मिथ्या जगत दोबारा कुछ करेगा? नहीं करेगा। पाशुपत अस्त्र है का बाण है भगवान का, भगवान शंकर के पास पाशुपात अस्त्र है ना, पाशुपात अस्त्र। वो पाशुपात अस्त्र से यदि कोई यदि नहीं मरता है तो एक साधारण तुच्छ बाण से मरेगा क्या? नहीं मरेगा। यही है। तो जो प्रातिभाषिक है, जो कर्तृत्वादी जो है वो क्या मारेगा उसके ब्रह्मज्ञानी के ज्ञान को? नहीं मार सकता। यह समर्थ पाशुपतास्त्रेण विद्धोपि न ममार चित किल स निष्फलेषु वितुन्नांग। अर्थात कहते हैं कि यह समर्थ पाशुपतास्त्रेण विद्धोपि, कहते पाशुपतास्त्र के द्वारा जो बींद गया है मतलब बांध दिया अथवा उसको मार दिया, तो वो मारने पर भी क्या न ममार, वो मरा नहीं है। चेत यदि उस पाशुपात आश्रय से नहीं मरता है तो किल स निष्फलेन, ये बताइए निश्चित रूप से जिस बाण में जो है लोहे की नोक नहीं है ऐसा यदि बाण मारे तो क्या उससे मरेगा? अर्थात नहीं मरेगा। इसी प्रकार ज्ञानी को जो ज्ञान बोध हो गया प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से अर्थात वेद रूप प्रमाण से बोध हो गया उस ज्ञानी को, वो बोध है और किसी से समाप्त होने वाला नहीं है। जो जी अविद्या ही समाप्त हो गई, वो अविद्या कुछ नहीं कर पा रही अब उस बोध के सामने, वो खत्म हो गई। उस अविद्या का कार्य जो तुच्छ जो भास है वो कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। जो कर्तृत्वादी जो है ना अध्यास, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे ज्ञानी भी कहते हैं ना मुझे ये करना है, मैंने प्रवचन किया, तो कर्तृत्व है कि नहीं? कर्तृत्व का अध्यास जैसी की बात है कि नहीं? तो कहते हैं वो कुछ नहीं रहता, वो सबका बाद हो जाता है। पाशुपात अस्त्र हाँ 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 वही 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 मैंने पाशुपात आश्रय से नहीं मरा तो उसका जो है सामान्य से क्या मरेगा? इसी तरह वो बोध होने के कारण वो अविद्या तो मरी पड़ी है ना, वो कुछ नहीं कर पा रही तो उसका कार्य क्या कर पाएगा? पशुपात आश्रय मान लीजिए अविद्या है और उसका कार्य हो ये सब जो अभी दिख रहा है, हाँ, उससे क्या हो जाएगा कि जो अविद्या उसको कुछ कर नहीं पा रही, मरी हुई अविद्या कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये सामान्य क्या कर पाएगा? उसका जो कार्य वो क्या कर पाएगा? अर्थात कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए उसको क्या है और समझाते हैं। शल्य रहितेशुणा व्यथित देह सन नंशति नाशम प्राप्स्यति इत्यत्र का प्रमा। तो कहते हैं जब ये जो सामान्य बाण ही कुछ नहीं कर पाया, शल्य रहित ईशुणा, ईशुणा अर्थात शल्य रहित मतलब नोक रहित जो ईशु है वो यदि कुछ कर नहीं पा रहा है तो सन नंशति नाशम प्राप्स्यति उसका नाश हो रहा है, इसमें क्या प्रमाण है? आप कहेंगे कि नहीं वो बिना नोकिला बाण है उससे क्या है क्षति हो रही है। अरे क्षति हो रही है इसमें क्या प्रमाण है? जब बड़ा पशुपात आश्रय उसको कुछ नहीं कर पाया, सामान्य बाण उसको क्षति कर रहा है, इसमें क्या प्रमाण है? जब बड़े ही आश्रय से कुछ पता उसको कुछ क्षति नहीं हुई तो सामान्य बाण से क्षति हुई इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं। इसी तरह ज्ञानी के लिए बता रहे अविद्या कुछ नहीं कर पाई, वो तो मरी पड़ी है अविद्या, वो बांध नहीं पाई अविद्या ज्ञानी को, तो उसका कार्य उसको बींधेगा इसमें क्या प्रमाण है? अर्थात कोई प्रमाण नहीं है। प्राप्स्यति इत्यत्र का प्रमाण अर्थात उसमें कोई प्रमाण नहीं, प्रमाणम नास्ति, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। चलिए आगे के विषय में हम लोग कल करते हैं। हरिओं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।